نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي پارا 18 پارا نمبر 18 سورة مومنون کے شروع سے شروع ہوگا تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اپنے موضوع کے اعتبار سے ہم سب نے دورہ قرآن کا تھیم یہ سوچا کہ ہم ایک امت بننا چاہتے ہیں جو دنیا میں تبدیلی لائے رائٹ اور رانگ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو شروع میں شاید اس کانسیپٹ کو اتنا نہیں سمجھے لیکن اب الحمدللہ وہ اس سے متفق ہیں آج اس سورت کی شروع میں ہم وہ چیک لسٹ پڑھیں گے کہ امت مسلمہ اگر اس دنیا میں امت وسط بن کر جینا چاہتی ہے تو ابتدا کہاں سے کریں کیونکہ ہم بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی زندگی کو ادھر ادھر گھما پھرا کے دیکھیں کہاں سے شروع کروں کیا کروں اس کو تبلیغ کروں اس کو کہوں کچھ نہیں آپ اس ترتیب چل پہ چلتے جائے جو اس میں اور ان آیتوں کی روشنی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے ہی تھے کان خلقہ القرآن جب کسی نے ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے تو آئیے ہم ان سب کو اکٹھا پڑھتے ہیں پھر میں ان سب کو آپ کے ساتھ انشاءاللہ ریکیپ کروں گی اور ہم سب دیکھیں گے کہ اگر آج یہ ترتیب ہماری تربیت میں شامل ہو جائیں تو ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ محنت کرنا مشکل سے زیادہ آسان ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون سورۃ مومنون ترتیب کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ یہاں نوٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ ہم نے ہدایت کے اعتبار سے چار مختلف گروہوں کا نام پڑھا تھا سورۃ بقرہ کے شروع میں تذکرہ تھا متقیوں کا تھا اور اسی طرح اس میں کافروں کا تھا اور منافقوں کا تھا قرآن پاک میں مومنون نام کی بھی صورت ہے منافقون کی بھی صورت ہے کافرون کی بھی صورت ہے آج اس ترتیب میں سے پہلی صورت ہے یعنی ایمان پہلی چیز ہے مطلوب یہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو ہمارے سامنے رکھ کر ہم سب کو ایک بار پھر سوچنے کا موقع دیا کہ کیا واقعی میں مومن ہوں اور کیا میرے اندر یہ صفات ہیں کیا فرمایا قد افلح المومنون پچھلے پارے کے اگر اینڈ پہ دیکھیے تو وہاں کیا بات تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایجنڈا دے دیا تھا کہ اگر تم ایک ملت بن کے جینا چاہتے ہو تو تمہیں وہ تمام کام کرنے پڑیں گے جو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا اور وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ اب یہاں اسی کے آفٹر ایفیکٹس ہیں کہ جب ایک انسان اللہ کو محکم پکڑ لیتا ہے اور وہ اس دنیا میں اللہ کا بندہ بن کے جیتا ہے تو اس کے لیے کیا نوید ہے فلاح کامیابی قد افلح تحقیق بے شک فلاح پائی من لانے والوں نے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں لغویات سے دور رہتے ہیں زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملکے یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے وہی زیادتی کرنے والے ہیں اور اپنی امانتوں اور عہدوں کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اولئکہم الوارثون یہی وہ لوگ ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے دیکھیں 11 آیات ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 10 صفات کا تذکرہ کیا پہلی چیز دیکھیں گے لفظ فلاح کو دیکھیں فلاح کیا ہے پوری کامیابی دین اور دنیا کی کامیابی ادھوری کامیابی کو فلاح نہیں کہتے بہت سارے اور لفظ ہیں فوز ہے فوزیہ لفظ ہمارے ہاں بہت عام ہے تو کامیاب کون ہے جس کو دین بھی ملا دنیا بھی ملی جس کی یہ دنیا بھی بنی اور جس کی آخرت بھی بنے گی یہ کبھی ہوا نہیں نہ ہوگا کہ مسلمان دنیا میں ذلیل ہو خوار ہو ناکام ہو سست ہو بدو ہو اور آخرت میں ان کو جنت مل جائے یہ کبھی نہیں ہوا آج اس کانسیپٹ کو کھرچ کے رکھ دیجئے چلے آج ہم بڑے مظلوم ہیں مجبور ہیں بیٹھے چائے پیتے رہتے ہیں حکا پیتے ہیں تبصرے کرتے ہیں دیکھنا جنمرتے سیدھے جنت میں جائیں گے کاٹ کے پھینک دیجئے اس کانسیپٹ کو مسلمان پہلے دنیا میں کامیاب ہوتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس کے لیے جنت لکھ دی ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ آخرت کی جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس دنیا کی جنت سے گزرنا پڑتا ہے کئی اس کے اینگل ہے دنیا کا سکون چاہیے دنیا کا اطمینان چاہیے تو لہٰذا مکمل کامیابیوں کی خواب اپنے بچوں کو دکھائیں جب ہم کہتے ہیں بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے کیا کرنا ہے وہ کرنا ہے تو وہ کامیابی کا ادھورا اصول ہے کیونکہ آج اگر عین جوانی میں بچے کی جان چلی گئی تو اس کی کامیابی تو ختم ہو گئی اور عربی زبان میں کسان کو فارمر کو بھی فلاح کہتے ہیں کاٹنا پھاڑنا محنت کرنا مجھے تو ایک ہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارا دین محنت کرنا سکھاتا ہے دوڑو بھاگو ایک جوش ہے دس دیٹ دس کل ہمیں اتفاق ہوا ایک جگہ پانی کو دیکھنے کا اور وہاں اتنے زور سے پانی پتھروں سے ٹکرا رہا تھا اور آواز پیدا ہو رہی تھی اور جوش پیدا تھا اوپر سے بالکل سیدھا پانی وہی تھا سمپل چل رہا ہے اس میں کچھ بھی نہیں جوش لیکن جو ہی وہ پہاڑوں میں پتھروں میں گرا شور بھی ہے جھاگ بھی तो उस वक्त मैं कह रही थी कि ये जो स्ट्रेट वानी है ना, ये आज उम्मत है, अंदर खैर बहुत है इनके, लेकिन अब इनको पत्थरों से टकराना नहीं आया। और जो नीचे छा गई अब यूथ है, ये वो लोग हैं जो थक चुके हैं पत्थर सुनते हुए। तो वो ईमान ही क्या जिसमें जोश ना हो, क्योंकि पहली शर्त क्या है, मोमिनून। ईमान इंसान के अंदर एक तब्दीली लाता है, हकीकत आप लिख लीजिए, ईमान वो चीज है जो आपसे भगवाता है। अभी आप गाड़ी में जब बैठ कर आए होंगे, गैस या पेट्रोल जो आपने जलाई वो आपका ईमान है। गाड़ी में पेट्रोल ना हो तो गाड़ी नहीं चलती। आपके अंदर ईमान ना हो तो अमल सवाले नहीं होता। और ईमान कोई मामूली चीज नहीं है, ईमान बहुत कीमती चीज है। ईमान इंसान के दिल की कैफियत को बदल देता है, इसकी दिलचस्पियों को बदल देता है, उसका इस दुनिया में जीने का रंग ही मुख्तलिफ हो जाता है, उसको अपनी आखिरत इस दुनिया में नजर आती है, उसको बिल्कुल जो प्रायोरिटीज थी वो लीज प्रायोरिटीज बनने लगती हैं, और जो लीज थी वो ऊपर आने लगती हैं। और याद रखिए कि मुफलिह का अंजाम जो है ना, वो असल में मेहनत के बाद है। हम अमूमन जुबानी कलामी बात करके कहते हैं कि बस हम मुसलमान हो गए, 1,25,000 कलमा पढ़ के रख लिया, मक्का में जाएंगे तो ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ लेंगे, लेकिन ईमान अमल के तकाजे करता है। आपके बोले हुए अल्फाज फिर आपसे कुछ तब्दीलियां चाहते हैं, और जिसके अंदर ये तब्दीली आने लगती है उसको फिर अपनी मंजिल जन्नत दिखने लगती है। और हकीकी ईमान के बाद संजीदगी आती है, इंसान इतना संजीदा हो जाता है लगवियात में नहीं आता। आप सोचिए ना इन सारी चीजों को, कि ईमान आया तो आपका दिल चाहा कि अल्लाह से प्यार करे, जिससे मोहब्बत होती है उससे बातें करने को दिल करता है, तो आपने नमाज शुरू कर दी। और नमाज कैसी पढ़ी, खाशियुन खुशियों के साथ, ये नहीं कि कोई दाढ़ी के बालों से खेल रहा है, तो कोई पर्दे के रंगों से खेल रहा है, और कोई जाय नमाज के डब्बे गिन रहा है, नहीं। फिर इंसान हकीकत में नमाजों के वक्त अपने आप को एक मुजरिम की सूरत में, एक कटहरे में खड़ा हुआ सोचता है, फिर खुद ब खुद खुशू आएगा। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, नमाज में ख्याल आते हैं, खुशू नहीं है। तो इन्हीं आयतों पे एक लेक्चर है जन्नत के बारे में, तो उसमें खुशू पे हमने डिफरेंट बातें की हैं। हर हर चीज का ताल्लुक खुशू से, वक्त पे पढ़े कि नहीं पढ़े, पहले क्या कर रहे थे, पहना क्या है, जगह कौन सी है, आपका दुपट्टा तो नहीं फिसलने वाला, आपकी जाय नमाज तो चुभने वाली नहीं, तो ये सब चीजों से भरकर मैं किसके सामने खड़ी हूँ। अब जो ही आपने नमाज पढ़ी खुशू वाली, तो उसके बाद मोमिन संजीदा होता है, तो फिर लगवियात की जिंदगी में जगह ही नहीं रहती। कौन 3 घंटे जाया करे। आहिस्ता आहिस्ता फिर नमाज इन सलात तनखान फक्श वल मुनकर, 21वें पारे में हम पढ़ेंगे कि नमाज तो बेहयाई और मुनकर से रोकती है। फिर दिल चढ़ने लगता है, फिर इंसान को ये खुराफात कभी वंस अ वाइल किसी के कहने पे किसी मौके पे हो गई तो हो गई, उस पर भी गिल्टी होगा, लेकिन इसके बरक्स जब आप किसी को ईमान के साथ देखे तो उसके प्लानिंग में नहीं हो सकता कि ये मुझे इतने घंटे में बैठ के ये करना है, मुझे ये कॉन्सर्ट देखना है, अभी ईद के फंक्शंस भी अटेंड करने, और उसमें ये कुछ है, फिर इंसान बेकार बैठ ही नहीं सकता। और जो ही इंसान की जिंदगी से लफ निकलता है ना, तो उसके पास माल बहुत बचता है, क्योंकि बहुत सारा माल जो है ना वो बेकार मशगलों पे जाता है। कई साथी कहते हैं जब हमने गाने छोड़े तो हमें एहसास हुआ कि हमारे पास कितने सीडीज हैं कि जिसमें सॉन्ग्स हैं, और कितना पैसा हमारा लग जाता था सिर्फ इन्हीं चीजों पे। अब जब पैसा छूटा तो फिर माल इस ज़कात फाइलून, फिर इंसान अपना माल अल्लाह के रास्ते में देता है, और साथ ही साथ फिर उसमें तज़किया होता है। हदीस में आता है कि गाना दिल में निफाक पैदा करता है, जैसे बारिश होती है तो खुद रो पौधे उग जाते हैं ना, इसी तरह सॉन्ग सुनने वाले के दिल में खुद ब खुद उल्टे पुलटे जज्बात आते हैं। अब जब वो निकले तो तज़किया हो गया, सोच पाक जाहिर पाक, जब अंदर पाक होते हैं ना तो फिर बाहर भी पाक होने लगता है, इसी तज़किया में वो सब कुछ आ जाता है, फिर लिबास पाक होता है, नजरें पाक होती हैं, वो किसी ऐसे हाल होलिए में ना बाहर जा सकता है ना घर में रह सकता है जो दूसरों को इश्तिहा दिलाए, कि जिसको देखकर इंसान को एहसास हो कि वाकई वो दूसरों को भी दावत दे रहा है। अब जब ये सब होने लगता है तो फिर खुद बहुत शर्मगा पाक हो गई, नजर पाक हुई, आंखें पाक हुई, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ नजरें पड़ती हैं तो बीवी पे पड़ती हैं। हकीकत आज के दौर में तो बीवी है। एक सच्चा मोमिन जो खुशी और लज्जत अपनी बीवी से पा सकता है, वो किसी और का वो सोच भी नहीं सकता। उसके दिल दिमाग ख्यालों में कभी कोई दूसरी औरत नहीं आती तो जिना का दरवाजा बंद हो गया, जब जिना बंद हो गया तो फिर अमानते और अहद की रियायत है। आप देखिए एक से एक चीज जुड़ी हुई है। एक मोमिन हकीकत में एक चलता फिरता दरख्त होता है ईमान का, और जब ये हो जाता है तो फिर इंसान अपने आप को जन्नत में पाए। फिर नमाज पे बात आ जाती, यानी मोमिन फर्ज नमाजें सुन्नत नमाजें नफिल नमाजों में आता है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या मैं मोमिन हूं कि नहीं, ईमान है कि नहीं, कैसे पहचाने, कैसे पता चले, तो अपनी नमाज को देख लें। जो मेरी नमाज की हालत है वो मेरे असल की हालत है। नमाज हमारे ताल्लुक बिल्ला की चुगली खाती है। फिर दूसरा इसका क्राइटेरियन आपके मेरे मशागिल, हम अपनी चीजों को देखें, हमें क्या अच्छा लगता है, हमारी हॉबीज क्या हैं, हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, इसी से इंशाल्लाह आपको खुद बहुत पता चलेगा। आपको पता है कि ये जो गंदी चीजें देखी जाती है उसका तबीयत पर कितना असर होता है। एक रिपोर्ट थी मेरे पास जिसमें लिखा हुआ था कि ये जो ग्लॉसी मैगजीन होते हैं, फैशन मैगजीन, और जिसमें बहुत खूबसूरत सी औरतें होती हैं, 70% औरतें जो हैं इसको देखने के बाद डिप्रेशन में चली जाती हैं। क्यों? वो कहते हैं कि ये अपना तकाबुल उन खूबसूरत लड़कियों से करती हैं जो कि वहां मैगजीन्स में, तस्वीरों में दिखती हैं। अब जब ये खुद को अपने आप पर नहीं पाती तो ये डिप्रेशन में चली जाती है। और इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि सिर्फ 3 मिनट देखे कोई, यानी आपके सामने एक ग्लॉसी मैगजीन, और आप देखिए जुल्म की हद है कि स्टोर्स में जहां आपको चेकआउट पे खड़ा होना ही पड़ता है काउंटर्स में, उधर गंदे रिसाले रखते हैं। और ये खुद किसी सिस्टर जिनके मियाँ खुद इसी तरह के यानी मार्केटिंग में थे, तो उन्होंने बताया कि हमेशा लोगों को ऐसी चीजें यहाँ जरूर दिखाई जाती क्योंकि यहाँ लोग फारिग होते हैं, नजरें पड़ती हैं, ये जिना को फैलाने की चीजें। अगली सूरत तो सारी जिना के टॉपिक पे। तो क्या पता चला कि जब 3 मिनट तक कोई एक औरत देखती है तो उसके बाद 70% औरतें डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो लिहाजा हमें अपनी आंखों को भी बचाना है, सब चीजें निकाल के फेंक दे जिससे आपकी दिल दिमाग पीछे चला जाए। आप कह लीजिए कि तज़किया ऐसी है कि एक अकलमंद किसान जो है वो अगले फूल खिला रहा है और लेकिन पिछलों को भी जाया नहीं करता। आपकी खेती कैसे लगेगी? एक फूल लगाएं तो एक तोड़ लें, एक फूल लगाएं तो एक तोड़ लें। नहीं, नेकियों का बाग कब बनता है कि पिछली नेकियां अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़ी है, अब आगे चलते हैं, चलिए अब और बाग लगाते हैं, अब और फसलें लगाते हैं, अब और खेतियां तैयार करते हैं। इस तरह फिर साथी मिलते जाते हैं और माशरों की तदखीर होने लगती है। अगर एक ही जगह को, एक ही इंसान पे आप मेहनत करते रहे तो एक वक्त आएगा कि बाग कभी नहीं होगा। तो तस्किया के अमल में फिर मुसलसल नेकियां भी आती हैं, कंटिन्यू। ये नहीं कि रमजान की नेकियां, आजकल आप खुद को फील करें, आपको कोई चीज भी छोड़नी मुश्किल नहीं लगेगी, आपको नमाज भी अच्छी लगती है। आप देखिए कि फजर, तहज्जुद, नमाजें, माशाल्लाह मस्जिदें भरी हुई हैं, लेकिन ईद के बाद ये कुरान छुटता है ना, इसका छुटना आपके अंदर से वो रेजिस्टेंस खत्म कर देता है। ईद अल्लाह ने शायद एक आजमाइश बना के रख दी, और जिन लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा इस रमजान में, वो ईद की पार्टियों में आपको बहुत कुछ ऐसी चीजों की दावत हो सकता है आदतन दे दें जैसे पहले देते थे। अब आप अगर उस तरफ पलट गए और आपने अपने आप को कहीं ना बांधा तो बिल्कुल वही बात है कि घर कितने को दिन साफ रहता है। आपकी मासी कल बेहतरीन घर साफ करके आपसे $100 लेके चली भी गई तो आपका घर कब तक साफ रहेगा? जब आप उसको साफ रखेंगे और रोज साफ थोड़ा थोड़ा करेंगे तो रहेगा, वरना उसको फिर आप बेशक अगले हफ्ते बुला लीजिए। तो ये तस्किया का अमल मुसलसल अमर है। चाहिए क्या? जन्नत, क्योंकि जन्नत बड़ी खूबसूरत जगह है। आला तरीन सिफात का मालिक आला तरीन जन्नतों में जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब सवाल करो तो अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगो क्योंकि उसकी छत रहमान का अर्श है, यानी द हाइएस्ट लेवल ऑफ जन्नत जो किसी आम उम्मती को मिल सकता है वह जन्नतुल फिरदौस है। हाँ, उससे भी ऊपर वसीला है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा। तो क्या मैं नहीं चाहते, आप नहीं चाहते? हमें सिर्फ दुनिया में खबर मिल जाए ना, एक बहुत खूबसूरत जगह बनी है, वहां ये है वो है, तो हम बिल्कुल अपने आप को इस चीज के अंदर महसूस कर सकते हैं। हम चाहते हैं हम एक नजर तो देखें, चलिए एक रात के लिए तो चलते हैं, चलिए देखें सही वहां क्या है। तो क्या हम नहीं चाहते कि हम कभी जन्नतुल फिरदौस देख ही ना सकें? और जिसने एक बार देखी उसको मिल जाएगी जन्नत में। ये नहीं कि चल हम नहीं इस काबिल थे, बस एक टूर करा दे, चले आज हमें वहां दूर से दिखा दे। जिसने एक बार देख ली फिर वहां मौजूद होगा। तो लिहाजा अल्लाह से दुआ करते हैं आज कोशिशों को तेज करवा ले। हो सकते हैं हम जन्नत में जाएं, इंशाल्लाह जाएंगे, लेकिन हम फर्स्ट सेकंड ग्रेड में बैठे हो, हो सकता हम थर्ड सेवंथ में हो। 100 दर्जे हैं तो जन्नतुल फिरदौस 100 दर्जे है। तो क्या हम नहीं चाहते? हम क्यों बीच में रहे, क्यों हम बीच में मीडियोकर बन के रहे? इट्स ओके, चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। क्यों आप ये कहते हैं? आप ये कहते हैं मुझे एवरीथिंग वांट, आई वांट एवरीथिंग, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह होगा। अब यहाँ बास लोग कहते हैं कि अच्छा जी देखो सिर्फ ये 10 चीजें हैं, बस ये कर लो तो जन्नत है, और ना तो इसमें शिर्क की बात है, ना हज की बात है, ना जिहाद की बात है। तो यहाँ असल में बीज बताया गया, सही अमल बता दिया गया। ईमान के बाद जो पौधा लगता है वो ऐसे ही होता है, उसके बाद बाकी चीजें खुद ब खुद आती हैं। सिर्फ एक आयत पर क्यास करके पूरी शरीयत को अगर पीछे कर देंगे तो भटक जाएंगे। इसलिए अब इसके बाद अब देखिए कि आगे से अब इंसान को उसकी तख्लीक दिखाई गई कि अल्लाह के हुक्मों पे बैसे ना करो, चूचा ना करो। अल्लाह सुभान तआला तुम्हें बेहतरीन तरीके से ये खूबसूरत सारे मामले सिखाकर जिम्मेदारियों को अदा करना सिखाता है। और एक छोटी सी बात कह दूं कि वल्लज़ीनहुमालियमानाती वहदिमराउन, उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा वादा जो अल्लाह से वो क्या है, कुन तुम खैरा उम्मत नुखरीदत लिन्नास। आज अगर हम अल्लाह का दीन नहीं फैला रहे, लोगों को नहीं बता रहे उसको अपने तरीके से प्यार से, तो हम कल क़यामत के दिन अल्लाह के हाँ जवाबदेह होंगे। पिछली ही सूरत ने आपको बता दिया, आखिरी आयत याद कर लीजिए सूरत हज की, कि किस तरह से अल्लाह ताला ने हमें ये बता दिया। और इन सब को लेकर चलेंगे, कमिटमेंट्स को निभाएंगे और अपने अपने कामों को लेंगे। अल्लाह ताला हमारे जरिए से इंशाल्लाह खैर कराएगा और बेहतरीन तरीके से ये काम होंगे।